23 अक्टूबर दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फतल। राहुल गांधी के गुजरात में आक्रामक तेवर।
ये जो गुजराती आवाज है ये कोई मामूली आवाज नहीं है और इस आवाज को ना दबाया जा सकता है ना खरीदा जा सकता है।
बात करेंगे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की शादी कराने के लिए बिहार में शुरू की गई एक अनोखी पहल की।
वो शादी का जो पैसा मिलता है उनसे उनका मनोबल बढ़ रहा है, चलो मेरे गार्जियन छोड़ भी देंगे ना, दो तीन साल में तो हम अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कर लेंगे, एक ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित एक रैली में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमले करने में जुटे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की केंद्र सरकार पर गुजरात के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आईबी के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समस्या का समाधान करना है। अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत के सवाल पर राजनाथ ने कहा कि दिनेश्वर शर्मा के पास ये आज़ादी रहेगी कि वो तय करें कि किन पक्षों से बातचीत करनी है। उन्होंने बताया कि दिनेश्वर शर्मा के पास कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा रहेगा। बांग्लादेश के मुताबिक म्यांमार में हिंसा के दौरान भागकर आए रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 10 लाख के करीब है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के प्रतिनिधि शमीम अहसन ने यह जानकारी जनेवा में संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद खराब है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से शरणार्थी मामलों के कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मंशा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को मदद मिले और वो बांग्लादेश से वापस म्यांमार जाएं। उन्होंने कहा,
conditions have to be recreated in Rakhine state.
रखाइन प्रांत में शरणार्थियों की वापसी के लिए स्थितियां बहाल करनी होगी। इनमें नागरिकता के सवाल को भी शामिल करना होगा। इसमें विकास के लिए निवेश की बात भी होनी चाहिए, जिसमें म्यांमार के सभी समुदायों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये थे फिलिपो ग्रांडी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दौरे पर पहुंचे टिलरसन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। अगस्त में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या बढ़ाने की योजना की जानकारी दी थी। टिलरसन भारत और पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक परमाणु संधि को खारिज नहीं करा सके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान क्षेत्रीय तौर पर अब जितना मजबूत है उतना पहले कभी नहीं था। उन्होंने एक समारोह में कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि की है और अमेरिका, जहां का नया नेतृत्व बीते 9-10 महीने से इसे इतिहास का सबसे खराब समझौता बता रहा है, वो भी इसमें कुछ नहीं कर सके हैं। ये ईरान की शक्ति, हमारी कूटनीति और हमारी शक्तिशाली सेनाओं की ताकत को जाहिर करता है। ये थे ईरान के राष्ट्रपति के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन में कैतालोनिया की स्थानीय संसद ने गुरुवार को अधिवेशन बुलाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को स्पेन की सरकार कैतालोनिया संसद की शक्तियों में कटौती कर सकती है। स्पेन की सीनेट कैतालोनिया की कुछ शक्तियां वापस लेने के सरकार के प्रस्ताव पर शुक्रवार को विचार कर सकती है। कैतालोनिया के विदेश मामलों के प्रवक्ता ने कहा कि स्थानीय अधिकारी ऐसे किसी फैसले को नज़रअंदाज कर देंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। पिछले तीन दिनों की तरह आज भी गुजरात खबरों में बना रहा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हार्दिक पटेल के तीन करीबी लोगों का जिक्र होता रहा, फिर उनमें से एक ने दूसरे दिन ही खुद को बीजेपी से अलग भी कर लिया। दूसरी तरफ आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गांधीनगर में एक रैली को संबोधित किया। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
ये कहना गलत होगा कि गांधीनगर की रैली में राहुल गांधी नए अंदाज में नजर आए। हाँ, पहले की बनिस्बत उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा हुआ दिख रहा था। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ स्टेज पर बैठे राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत कई जयकारों से की। जय सरदार, जय भीम, और फिर बात हुई गुजरात के अस्मिता की।
ये जो गुजराती आवाज है, ये कोई मामूली आवाज नहीं है, और इस आवाज को ना दबाया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। जितना भी आप पैसा लगा लें, 1 करोड़ लगाएं, 10 करोड़ लगाएं, 50 करोड़ लगाएं, 1000 करोड़ लगाएं, हिंदुस्तान का पूरा बजट लगा दें, दुनिया का पूरा पैसा लगा दो, गुजरात की आवाज को नहीं खरीदा जा सकता है।
गांधी ने गुजरात के गौरव का जिक्र भी किया महात्मा गांधी की बात कर, जिन्होंने राहुल गांधी के शब्दों में कहा जाए तो उस वक्त के सुपर पावर को भारत से खदेड़ दिया था। जाहिर है राहुल गांधी का इशारा उस घटना की तरफ भी था जिसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हार्दिक पटेल के संगठन के एक नेता नरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उन्हें पैसों से खरीदना चाहती थी। गुजराती अस्मिता, वही जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब से करते रहे हैं जब वो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भाषण में राहुल गांधी ने अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी का भी जिक्र किया। अब अल्पेश ठाकुर औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी यही नहीं ठहरे, बल्कि बात की बेरोजगारी की और दूसरे मुद्दों की भी।
गुजरात में आज 30 लाख बेरोजगार युवा हैं, 30 लाख। हर रोज हिंदुस्तान में 30,000 नए युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 30,000 में से 24 घंटे में सिर्फ 450 को रोजगार दे पाती।
जीएसटी और नोटबंदी का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। जीएसटी के मामले पर खूब तालियां भी बटोरी उन्होंने, जब कांग्रेस अध्यक्ष ने जीएसटी का फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स बताया और उद्योगपतियों को 1,30,000 करोड़ की छूट और किसानों और बाकी लोगों के लिए हर चीज, शिक्षा से स्वास्थ्य तक के महंगी होने का जिक्र करते हुए उन्होंने अमित शाह के बेटे की कंपनी की बात की, जिसकी कमाई कथित तौर पर कुछ ही माह में 16,000 गुना बढ़ गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा,
मोदी जी आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जय शाह ज्यादा खा गया, इसके बारे में तो कुछ कहिए।
इस बीच बीजेपी नेता भरत पांड्या ने नरेंद्र पटेल मामले पर कहा है,
फैब्रिकेटेड ड्रामा किया है, मीडिया के सामने आना, मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसा कहना, और वरुण पटेल के साथ ही आना, और उसके बाद 2-3 घंटे में यू टर्न करना और इस प्रकार की बात करना, ये बिल्कुल उनका पहला से ही ड्रामा तय था। मैं समझता हूँ कांग्रेस इस प्रकार के ड्रामे से गुजरात की जनता को गैर मार्गे वो नहीं दौड़ सकता।
राहुल गांधी का नया आत्मविश्वास हो सकता है कि बीजेपी की गुजरात सूबे में पतली हालत को देख कर हो, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, There are many slips between cups and lips, यानी चाय की प्याली और होंठों के बीच भी खासा फासला है। फैसल मोहम्मद अली, BBC, दिल्ली।
राजस्थान में जजों और लोक सेवकों को सुरक्षा कवच देने वाले एक विधेयक को लेकर भारी विवाद उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष ने इसे काला कानून बताया है और विधानसभा में इसको लेकर जमकर हंगामा किया है। सरकार का कहना है कि ये कदम ईमानदार लोक सेवकों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए उठाया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी में भी इस कानून के खिलाफ आवाज उठी है। जयपुर से नारायण पारेख की रिपोर्ट।
इस विधेयक से राजस्थान का सियासी तापमान यकायक बढ़ गया। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। प्रतिपक्ष के विधायक इस कानून के विरोध में मुंह पर काली पट्टी बांधकर मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे। विरोध मार्च करते कांग्रेस विधायकों की पुलिस से तकरार हो गई।
तमाशा बना रखा आपने नहीं जाने दोगे, एक तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, ऊपर से धमका रहे हो, ये सुअर से ताना नहीं जाने दोगे, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, ऊपर से धमका ताना ऐसा रहे ऐसे क्यों हो रहे हैं आप नहीं यहाँ
विपक्ष का आरोप है कि सरकार पुलिस के जरिए दबाव बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह कानून भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। कांग्रेस के मुख्य सचेतक गोविंद डोटासरा कहते हैं,
संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार के नेता और अफसर 4 साल से भ्रष्टाचार कर रहे थे। अब जब मीडिया मुखर होने लगा, जब कोर्टों में इनके खिलाफ अपराध के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने लगा कोर्ट, तो इन्होंने एक काला कानून लाए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, कोई कारण नहीं बताया क्यों ऑर्डिनेंस लाए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से मीडिया की आवाज को बंद करने का काम किया, नेता भ्रष्ट नेता और अफसरों को बचाने का जो कानून लाए करके आए हैं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इनको नहीं करने देंगे ऐसा।
कोई इस कानून के विरोध में खड़ा है तो कोई हिमायत में आवाज उठा रहा है। इस कानून को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी में भी विरोध के स्वर सुनाई दिए हैं। पार्टी के 2 वरिष्ठ विधायकों घनश्याम तिवाड़ी और नरपत सिंह राजवी ने कानून का विरोध किया है। श्री तिवाड़ी आपातकाल में जेल में बंद रहे हैं, वे इस कानून को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ मुखर होकर सामने आए हैं।
ये बेईमान नेताओं को और बेईमान अधिकारियों को कर्मचारियों को बचाने का कानून है। इस कानून के पास राजस्थान की विधानसभा में नहीं होने देंगे और जितना दम उतना लगाएंगे। ये कानून पास करना और आपातकाल लगाना एक ही बात है, मुख्यमंत्री महोदय और उनका सीएमओ उनके कारण से ये पास हो रहा है। इसको 6 महीने से लगातार पास करने का प्रयत्न कर रही है।
इस कानून का मानवाधिकार संगठनों ने भी विरोध किया है। इस बीच जयपुर के भगवत गौड़ ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जयपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष ईशमधु तलवार ने इसे प्रेस की आजादी पर पहरा बताया है। इस हंगामे के बीच विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी को शिकायत है कि मीडिया लोगों की ट्रायल करता है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रतिपक्ष के आरोपों को गलत बताया है। श्री राठौड़ कहते हैं,
प्रतिपक्ष को भी हम तर्कों के आधार पर जवाब देंगे। कुछ पे ये इरादा नहीं है कि हम किसी भ्रष्टाचारी को बचाना चाहते हैं। राजस्थान की सरकार, वसुंधरा जी की सरकार ने पहली बार राजस्थान के इतिहास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को और पूर्व के बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्त में लिया है। मैं समझता हूँ कि व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात सारे पहलू उसके सामने आ जाएंगे। लोकतंत्र के अंदर मीडिया चौथा स्तंभ है, उसका हम आदर करते हैं। मीडिया पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने का इरादा राज्य सरकार का नहीं।
भारत में संत महात्मा पीर फकीर कहते हैं, सांच को आंच क्या, लेकिन सियासत इसे नहीं मानती। नारायण बारेठ, BBC, जयपुर, राजस्थान।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
झारखंड की राजधानी रांची से सटे भोसूर गांव में आदिवासी लड़कियों का एक अभियान इन दिनों चर्चा में है। इस गांव की लड़कियों का एक समूह पिछले कुछ दिनों से शराब के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस दौरान इस बात पर भी बहस हो रही है कि क्या शराब आदिवासी परंपरा का अनिवार्य अंग है या फिर इसे छोड़ा जा सकता है। सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
जो हुआ नशे का शिकार, उजड़ा उजड़ा घर परिवार, नशा एक बीमारी है, उसे हमें छुड़ा नहीं है।
इस कोरस में एक आवाज सीमा की भी है। सीमा भुसुर गांव में शराब के खिलाफ अभियान चला रही 30 लड़कियों में से एक हैं। उनका बचपन माँ पिताजी की लड़ाई देखते हुए बीता। उनके पिताजी सुबह सवेरे ही शराब पी लेते, फिर पूरे दिन माँ से लड़ाई करते। अब MA की पढ़ाई कर रही सीमा पर घर के इस माहौल का गहरा असर पड़ा। गांव की दूसरी लड़कियां भी अपने घरों में इन्हीं परेशानियों से गुजर रही थी। फिर इन सब ने मिलकर शराब के खिलाफ अभियान चलाने की बात सोची। सखी सहेली नाम का एक ग्रुप बना और इन लोगों ने अपने अपने घरों से इस अभियान की शुरुआत कर दी। सीमा बताती हैं कि शुरू में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
लड़ाई झगड़ा भी होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है। वही सब सोच करके फिर हम लोग का एक ग्रुप है सखी सहेली, तो उसमें हम लोग बात करते थे सब लोग मिल करके कि हम लोगों को इसको बंद करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग का परिवार सुधरेगा, हम लोग का गांव सुधरेगा। तो फिर हम लोग समझाना शुरू किए, हम लोग का कुछ सोचिए अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में।
रिंग रोड के किनारे बसे 100 घरों वाले इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं। सबके सब आदिवासी हैं। उनके घरों में हड़िया बनाई जाती है। हड़िया एक किस्म की देसी शराब है जो आजीविका का साधन भी है। लोग इसे आदिवासी परंपरा से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि सरना धर्मावलंबियों की पूजा के दौरान इसे प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। ऐसे में यह बहस भी हो रही है कि आखिर किसने कह दिया कि शराब आदिवासियों की परंपरा का हिस्सा है। इस अभियान को लीड कर रही शोभा तिर्की ने बताया कि इसके लिए उन लोगों ने आदिवासी बुद्धिजीवियों के लेक्चर भी कराए।
हमारा कहना है कि ये परंपरा नहीं है। हमने कल भी एक लोगों को बुलाया है कि आप बताइए कि हमारी आदिवासी परंपरा क्या है। क्या शराब सचमुच परंपरा है हमारी, या फिर सिर्फ वो एक नेग है, नियम है कि उसके तहत हम थोड़ा सा वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन हमको शराब में ही डूब कर रहना है।
अपनी लड़कियों के इस अभियान से गाँव के लोग चकित रह गए। धीरे धीरे इन्हें घर की महिलाओं का समर्थन मिलने लगा। इस ग्रुप में शामिल मंजू की भाभी मीना टुप्पो ने बीबीसी को बताया,
चाहे मतलब वो किया है और होना चाहिए बंद सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग का तो जैसे तैसे बीत ही रहा है और इसलिए चाहते हैं कि बच्चों में बदलाव आए।
भोसूर में अपनी संस्था आशा के जरिए महिला उत्पीड़न जैसे मसलों पर काम कर रहे अजय कुमार इस अभियान को लेकर काफी आशान्वित है। उनका मानना है कि बहुत जल्दी इस गाँव के सभी लोग शराब पीना छोड़ देंगे, क्योंकि इन लड़कियों के आंदोलन में दम है।
आंदोलन मैंने कैंपेन या अभियान कर सकते हैं, ये लोग खुद इनिशिएटिव लेके चलाए हैं, अपने घरों से स्टार्ट किए हैं। घर में जो लोग पीते हैं उनको मना करना, जो अगर शराब बनाते हैं उनको मना करना, और ये असर होगा।
दरअसल आदिवासी समाज मानता है कि शराब उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। इस कारण झारखंड में शराबबंदी को लेकर चलने वाले अभियान तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन इन लड़कियों के अभियान को सफलता मिलने लगी है, क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत ही अपने घरों से की है। ऐसे में संभव है कि अपने घर से उठी इस आवाज का असर गांव भर के लोगों पर हो और आने वाले दिनों में भूसूर गांव के लोग शराब को पूरी तरह से नकार दें। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए भूसूर में।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आज सोमवार है और आपके पत्रों के साथ हैं सरोज सिंह और राजेश प्रियदर्शी।
आपकी राय, नमस्कार। आपकी चिट्ठियों के साथ आज सरोज सिंह यहां मौजूद हैं और मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। तो आइए शुरू करते हैं चिट्ठियों का सिलसिला।
सबसे पहली चिट्ठी पढ़ रही हूँ मैं हरिविलास सिंह तोमर की। ये मध्य प्रदेश मुरैना से लिखते हैं। 18 सितंबर को पत्र कम शामिल हुए थे, ईमेल अधिक। नए श्रोताओं को तरजीह ना देने व आलोचना भरे पत्रों को ना शामिल करना बीबीसी की आदत बनती जा रही है, इसलिए मैंने इस पत्र को शामिल भी किया है। और सबसे पहले आज शुरुआत मैंने पत्र से की है,
क्योंकि ये पोस्ट कार्ड है जी, और हमारे पास आया है और इसमें शिकायत भी है और ये पोस्ट कार्ड भी है, और हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही इसी चिट्ठी से की है। और हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो लोग डाक से चिट्ठी भेजते हैं, जो कि हमें थोड़ी देर से मिलती है, उसके बावजूद हम उसको कार्यक्रम में शामिल करें। और हरिविलास जी ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूं कि यहां मेज़ पर हमारे सामने कई और चिट्ठियां हैं। अगली चिट्ठी भी डाक से आई है और ये उत्तर प्रदेश से आई है। बताइए क्या लिख रहे हैं।
ये विष्णु वर्मा जी की है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि ये जानकर अत्यंत सुखद और प्रसन्नता हुई कि बीबीसी द्वारा 4 भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारण का विस्तार किया जा रहा है। बांग्ला भाषा में कार्यक्रम प्रसारण विस्तार न किया जाना आश्चर्यजनक है।
एक बड़ी अजीब सी बात है विष्णु वर्मा जी, कि आपको इस बात की सूचना नहीं है कि पिछले कई दशकों से बीबीसी के प्रसारण बांग्ला भाषा में होते रहे हैं, और बीबीसी की एक पूरी सर्विस है, बीबीसी बांग्ला सर्विस, जिसको आप रेडियो पर भी सुन सकते हैं और फेसबुक पर और बाकी उनकी वेबसाइट पर, बीबीसी बंगाली की जो वेबसाइट है उस पर भी देख सकते हैं।
अगला खत ही है, ये लिखते हैं शेख मुस्लिम, ग्राम रानीगंज, अररिया, बिहार से। इनका कहना है कि रेहान फजल की विवेचना इन्हें बेहद पसंद है और इन्होंने एक सुझाव दिया है रेहान फजल साहब के लिए कि मेरा अनुरोध है म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों से संबंधित विवेचना जरूर प्रस्तुत की जा सके जो सच्चे इतिहास पर आधारित हो।
बहुत शुक्रिया आपका। हमें ऐसे सुझाव पहले भी, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ श्रोताओं से मिले हैं, और रोहिंग्या मुसलमानों की दुर्दशा पर, उनकी हालत पर और वहाँ चल रहे, वहाँ का जो घटनाक्रम है उस पर हमने लगातार कई कार्यक्रम और विस्तार से प्रस्तुत किए हैं। ये बात अलग है कि उसको विवेचना के तहत उस तरह से रेहान फजल ने नहीं किया है, ये बात हम रेहान फजल तक ज़रूर पहुँचा देंगे। और आपके पत्र के लिए आपका शुक्रिया।
अगला ईमेल है गौरी सेन की तरफ से। इनका कहना है कि ये लखनऊ में रहती हैं और ये नियमित श्रोता हैं हमारी, सबसे पहले पूरे परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं और इन्हें दिव्या आर्या के शोध पर आधारित जो विशेष श्रृंखला का पहला भाग प्रसारित किया गया था रविवार को, वो उन्हें बेहद पसंद आया है। उनका कहना है, वो लिखती हैं, मैं स्वयं एक दृष्टिबाधित महिला होने के नाते दिव्या आर्या जी के इस खास शोध के लिए समस्त विकलांग समाज की ओर से उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से उन्होंने अनछुए पहलुओं को बेहद बारीकी से समझाया वो कोई और नहीं कर सकता था।
पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो वैसे भी बहुत खुशी होती है इस बात की कि महिलाएं हमें एक तो बहुत कम चिट्ठी लिखती हैं और ये कार्यक्रम आपको पसंद आया और आपने चिट्ठी लिखी, और साथ में हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे ऐसे श्रोता हमारे हैं जो दृष्टिबाधित हैं और बहुत नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमारे प्रसारणों में हमारे मन में हमेशा उनका ख्याल रहता है। हम जानते हैं कि हमें सुनने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम पर खबरों के लिए और जानकारी के लिए, समझ के लिए और बहुत सारी दूसरे मनोरंजन के साधन के तौर पर हम पर निर्भर करते हैं और हम उनका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं।
अगला ईमेल है संजय कुमार वैद्य जी का। इनका कहना है कि मैं आपका बहुत पुराना प्रशंसक रहा हूँ, कृपया ऐप में सर्च ऑप्शन दें और कृपा कर ऐसी सुविधा प्रदान करें कि पुराने आर्टिकल हम BBC पर खोज सकें। एक और निवेदन है इनकी, ये कहते हैं कि कुछ ऐसी सुविधा हो आर्टिकल्स को हम सेव कर सकें ताकि ऑफलाइन जब भी रहें आराम से फुर्सत में उन्हें पढ़ सकें।
दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा ऐप जो है वो अपग्रेड होने वाला है, उसमें सुधार और बदलाव किए जा रहे हैं जो कि जल्दी ही आपके सामने होगा। दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आप कहीं भी वाईफाई की सुविधा वाले इलाके में जहाँ पर कि इंटरनेट सिग्नल मौजूद है, वहाँ अगर आप BBC के पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें तो उसके बाद ऑफलाइन आप उसको पढ़ सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आपने लोड कर लिया तो वो आपके लिए उपलब्ध रहता है, आपको उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती उसको खोलकर पूरा पढ़ने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, घड़ी इशारा कर रही है कि अब हमें चलना चाहिए। आपके पत्रों के लिए आपका शुक्रिया, इसी तरह लिखते रहिए। डाक से भी, ईमेल से भी, तारीफ भी, आलोचना भी, सब कुछ बस हमसे बात करते रहिए। अगर आप हमें डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है आपकी राय BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के जीवन में प्यार, शारीरिक चाहत और साथी की ज़रूरत के बारे में हमने रविवार को एक विशेष बातचीत आपको सुनवाई थी। आज बात शादी की। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की शिक्षा और रोज़गार को तो कुछ अहमियत दी जाती है पर शादी की ज़रूरत नहीं समझी जाती। इस रवैये को बदलने के लिए कई राज्य सरकारों ने एक योजना लागू कर इस तरह के व्यक्ति से शादी करने पर उन्हें जीवन के गुजर बसर के लिए कुछ धनराशि देनी शुरू की है, लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है। इसके सभी पहलुओं को समझने के लिए बिहार में इस योजना के लाए जाने के बाद शादी करने वाले नालंदा के एक दंपत्ति से मिली BBC संवाददाता दिव्या आर्य, उनकी रिपोर्ट।
राजकुमार और रूपम की इसी साल शादी हुई है। रूपम कुमारी अपने पैरों पर चल नहीं सकती हैं। बचपन में ही पोलियो हुआ और फिर टांगें कभी सीधी नहीं हो पाईं। वो हाथ के बल फर्श पर रेंग कर चलती हैं। राजकुमार सिंह भी व्हीलचेयर की मदद से ही चल पाते हैं। इनकी शादी करवाने में इनके परिवार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिर विकलांग लोगों को शादी की ख्वाहिश क्यों हो? शायद समाज की इसी सोच ने इन्हें एक दूसरे से दूर रखा।
हम बोले कि आप बच रहे हैं तो ठीक है, आप दोनों में गुजर जाइएगा तो हमको कौन निहारेगा, भाई भौजा किसी को हुआ तो वो रहेगी तो एक रोटी तो आप बना के मिल जाएगा। बहुत दूर से हम समझाए तब भाई जो कि तैयार।
रूपम का अनुभव अलग था। उनका परिवार उनकी शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता था। परिवार पैसे वाला है तो पैसे देकर किसी भी गरीब गैर विकलांग से शादी को तैयार था, पर रूपम विकलांग लड़का ही चाहती थी।
खराबी है तो चार गो के बकाबा में आके लड़की को कुछ भी कर सकता है,
मतलब ये है कि जो किसी कभी किसी को मार भी देता है, किसी को छोड़ भी दिया, किसी का रेप करके छोड़ दिया, कभी किसी का, वो अपना बीवी नहीं समझता कि हमको बीवी हुआ है, उसका फायदा चाहिए उसके लिए कि हमको क्या फायदा उससे है।
आखिर में एक सरकारी योजना दोनों के रिश्ते की वजह बनी। इसके तहत विकलांग व्यक्ति से शादी करने पर सरकार 50,000 रुपए देती है। लड़का लड़की दोनों विकलांग हो तो पैसे दोगुने हो जाते हैं, यानी 1,00,000 रुपए। शर्त ये है कि ये पैसे शादी के 3 साल पूरे होने पर ही दिए जाएंगे।
अनुभवी लोग भी बोल रहे थे कि आप शादी करवा के कौन सा जीवन का उत्थान करने जा रही हैं इन लोगों का, जो खुद भी अपना नहीं कर सकते हैं अर्निंग।
वैष्णवी स्वावलंबन विकलांग अधिकार मंच नाम की गैर सरकारी संस्था चलाती है। वो खुद भी विकलांग है और बैसाखी इस्तेमाल करती है। इस सरकारी योजना की जानकारी फैलाकर वो विकलांग लोगों का सामूहिक विवाह करवा रही हैं। इरादा तो मदद का है, पर आलोचना भी हो रही है। क्या ये सरकार की ओर से दहेज है, और पैसे के लालच में शादी के बाद अगर कोई भाग जाए?
हम इसे नहीं मानते हैं दहेज। वो शादी का जो पैसा मिलता है उनसे उनका मनोबल बढ़ रहा है, चलो मेरे गार्जियन छोड़ भी देंगे ना 2-3 साल में, तो हम अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कर लेंगे। एक ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है।
राजकुमार और रूपम को इस योजना ने आर्थिक रूप से आजाद होने का भरोसा तो दिया है, पर क्या सचमुच ये मदद एक मजबूत रिश्ते की भी नींव रख पाएगी? दिव्या आर्य, BBC, नालंदा, बिहार।
भारत और श्रीलंका के बीच अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्यांशी पांडे की रिपोर्ट।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 3 ODI सीरीज में रविवार को हुए पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 6 विकेटों से हराया। सीरीज का दूसरा मैच 25 अक्टूबर को पुणे में खेला जाएगा। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 नवंबर को होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई। टीम में चुने गए खिलाड़ियों के नाम हैं कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, KL राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, आशीष नेहरा और मोहम्मद सिराज। इन नामों में से एक नाम आज चर्चा में रहा। हैदराबाद के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज 2017 में हुए IPL में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए चुने गए थे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में वो शामिल हुए थे। मोहम्मद सिराज के न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में चुने जाने पर बोल रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली।
स्टेट सेलेक्टर से उन्होंने बहुत मेहनत की, PVS लक्ष्मण ने उनके ऊपर वो जो है खास ध्यान दिया और हैदराबाद सनराइजर्स में उनको पिक किया उन्होंने IPL में। तो IPL के जरिए तो सबको दिख गया मोहम्मद सिराज क्या है, लेकिन जो हैदराबाद के प्लेयर्स हैं उनको पहले से मालूम था, कोचेस को मालूम था कि जो है इस बॉलर में बहुत दमखम है।
इस सीरीज के लिए जहां टीम में श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को जगह मिली, तो वहीं युवराज सिंह, सुरेश रैना और अजिंक्य रहाणे को जगह नहीं मिली। वहीं श्रीलंका के खिलाफ 16 नवंबर को होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा हुई। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुने गए खिलाड़ियों के नाम हैं विराट कोहली, KL राहुल, मुरली विजय, शिखर धवन, चित्तेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, वृद्धिमान साहा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा। फिलहाल क्रिकेट जगत की निगाहें भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 ODI सीरीज पर टिकी हुई हैं। इस सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को मात दी, तो वहीं दूसरे मुकाबले यानी 25 अक्टूबर को होने वाले मैच में भारत जीत की रणनीति से मैदान पर उतरेगा ताकि सीरीज में वापसी कर सके।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर की एक रैली में नोटबंदी और GST का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने IB के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर पर सभी पक्षों से बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। बांग्लादेश के मुताबिक म्यांमार से हिंसा के दौरान भागकर आए रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 10,00,000 के करीब है। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।